पृष्ठ संख्या 36। कुछ लोग अपनी लड़की को सौतन बनाकर भेजते हैं, परंतु सौतन बनना क्या स्त्रियों के लिए परंतु सौतन बनना क्या स्त्रियों के लिए आनंददायक है? पति यदि कभी दूसरी नारी की ओर देख ले तो भी पत्नी जलभुन उठती है, फिर अपनी सौतन आए या कौन सी नारी को सुहाएगा उस पर दोनों के लिए समान आचरण रखने वाले महाभाग पति दुर्लभ ही हैं। गहने वस्त्र आदि का समान विभाजन हो सकता है, परंतु प्रेम वह तो फल के समान बांटा नहीं जाता। प्रेम तो दूध के समान है, एक बार फट गया तो खराब ही हुआ समझो। यदि कोई स्त्री पर पुरुष को नजर भर देखती है तो उसका पति अंगारों की तरह जल उठता है। आग बबूला हो अपनी ही पत्नी की इज्जत पर दाग लगाने के लिए उतारू हो जाता है। मारपीट का तो अलग से पुरस्कार मिलता ही है, पराई स्त्री को देखने वाले पुरुष को क्यों नहीं इस तरह बेइज्जत किया जाता? और फिर गरीबी के कारण यदि कोई पिता अपनी लड़की को सौतन बना कर भेज दे तो वह पिता कैसा? यह तो पितृत्व का लक्षण नहीं हो सकता। डसे तो केवल कसाई ही कहना चाहिए। धनवान होते हुए और मनचाहा पति होते हुए भी पर पुरुष का साथ देने वाली औरतें काफ़ी कम हैं, जैसे कि किसी राजा के रानीवास में होता है, परंतु वहाँ राजा की इतनी पत्नियां होती हैं कि वर्षों तक पति प्रेम नसीब नहीं होता। फिर यौवन की आग में झुलसती ये स्त्रियां अपने आसपास मंडराने वाले दासों का साथ न दे तो और क्या करें? पृष्ठ संख्या 37। यदि पति ही एक पत्नी व्रत का आचरण करने वाला हो तो ऐसे प्रश्न ही नहीं उठेंगे। यौवन की आग में स्वयं को ब्रह्मज्ञानी समझने वाले भी पिघलते हैं। यहाँ तो कोमल हृदय नारी है और फिर करताल की ध्वनि दोनों हाथ से ही होती है ना। कभी कभी कोई धनवान अपनी इकलौती बेटी का ब्याह किसी गरीब से कर उसे घर जमाई बना लेता है। जब तक वे दोनों अज्ञानी होते हैं तब तक तो ठीक रहता है, परंतु जब दोनों बड़े होते हैं, सयाने होते हैं, तो पति की नज़रों में पत्नी का धनवान होना उसका कूलशील कांटों के समान चुभता है। वह अपनी पत्नी से अपनी तुलना करता है, पौरुष दिखाने के लिए वह पत्नी से मारपीट करता है। कभी-कभी पत्नी को अपना कुलहीन गरीब पति पसंद नहीं आता और ऐसा संसार साल के साथ कंबल की तरह होता है। क्या इसमें पिता दोषी नहीं जिसने अपनी लड़की का ब्याह अपनी बराबरी के घर में नहीं किया? तुम्हें जिस प्रकार गवार कुरूप पत्नी पसंद नहीं, उसी प्रकार पत्नी भी गवार कुलहीन पति कैसे पसंद करेगी? पत्नी की भी कुछ अपेक्षाएं तो होती ही हैं। ज़्यादातर बाल विवाह ऋण से लेकर किए जाते हैं, वहाँ हर एक को सुंदर धनवान लड़की कहाँ से मिलेगी? यौवन में सुशिक्षित हुए तुम्हें फिर ऐसी गंवार पत्नी के प्रति घृणा महसूस होती है और उसे नौकरानी का स्थान तुम देते हो, अपने लायक दूसरी पत्नी की फिक्र में लग जाते हो और ऐसी कोई मिलते ही दूसरा विवाह रचाते हो। नारी कभी इस प्रकार बर्ताव नहीं करती। जो पति नसीब में मिलता है उसके साथ ही जिंदगी गुजार देती है। अब अवगुण किसके पास है, स्त्री या पुरुष के पास? पृष्ठ संख्या 38। कपट नीति में तो तुम लोग प्रवीण हो, हर पग पर तुम्हारी कपट नीति दिखाई देती है। बहुरूपिये बनकर तुम घूमते हो, कितने नाम दिए जाएं तुम्हारे, गोसावी साधु वैरागी दुग्धाधारी मीताहारी जटाधारी और न जाने कितने। सन्यासी का स्वांग रचते हो, बाबा कहलाकर लोगों को ठगते हो, तुम्हारा पंच पकवानों का उपभोग शुरू होता है, साथ ही साथ और करतूतें शुरू रहती हैं। दर्शन के लिए आई महिलाओं में से सुंदर नवयौवना नज़र में आती है। मन में ईश्वर की जगह उन सुंदरियों का चिंतन बाबा करते हैं। काशी जा कर गंगा नहाने से अंतर्मन की पाप वासना थोड़े ही जाती है। पूरे बगुला भगत हो तुम, मुंदी हुई आँख से किसी स्त्री का ध्यान लगाकर तपस्या करने वाले भगवान के सामने पड़े पैसे उठाकर रंडी के घर जाने वाले तुम कैसे सन्यासी। जब भगवान भी स्त्री के विरोध में हैं तो तुम किस खेत की मूली हो। कृष्ण ने अर्जुन को सन्यासी के रूप में सुभद्रा हरण करने के लिए कहा और सुभद्रा हरण के बाद यादव चिल्लाने लगे, सन्यासी ने बुआ को भगाया। कभी सुना है कि बुआ ने सन्यासी को भगाया। वैसे ही रावण सर्वशक्तिमान हुआ तो सारे त्रिभुवन को त्राही त्राही करना पड़ा। देवों ने नारायण की प्रार्थना की और उन्होंने राम के अवतार में जन्म लिया। सीता राम रावण युद्धोपरांत रावण के घर से लौट आई तो उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। फिर अयोध्या में एक सामान्य पुरुष ने उस पर उंगली उठाई तो उसे गर्भावस्था में वनवास स्वीकार करना पड़ा। इसमें राम का बड़प्पन कहाँ है? फिर भी राम की महिमा गाई जाती है, वह देव हैं और सीता के भाग्य में केवल दुख। तुम तो इन देवों की परछाई हो, तुम्हारी करतूतें तो देवों से बढ़कर हैं। जिसके साथ भाई का रिश्ता मानते हो उसका भी बुरा सोचते हो, दोस्ती के गुण गाते हो किंतु उसकी स्त्री से लेकर घर के कुत्ते पर भी तुम्हारी नज़र रहती है। पृष्ठ संख्या 39। सदैव दूसरे की निंदा करते फिरते हो। नारी को कभी अपनी सहेली के प्रति जलन करते हुए देखा है? किसी नारी ने सन्यासिनी के रूप में कभी किसी पुरुष को भगाया है? एक तो उदाहरण दे दो। नारी संभवतः भोली होती है, इसीलिए ही शायद वह साधु वैरागियों की बातों में आ जाती है, ठगी जाती है, असाध्य कर्मों से इच्छाएं पूरी करने में उनकी मूर्खता अवश्य दिखाई देती है। यदि वे ऐसे कर्म ज्ञान प्राप्ति के बाद भी करती हों तो उन्हें दोषी कहना ठीक था। अज्ञानी अशिक्षित स्त्रियां ही ऐसे अविचार करती हैं। मोहिनी की विषय में कहा जाए तो स्त्री जाति स्वयं मूर्तिमंत मोहिनी है। नख से लेकर शिखर तक उसका हर अवयव, उसकी चाल, उसकी आवाज, आचरण, सब कुछ दूसरों को आकर्षित करने वाला चुंबक है। मधुमक्खियाँ जिस प्रकार मधु छत्ते पर लुब्ध होती हैं उसे देखते ही वैसे ही पुरुष मोहित होता है। इसमें नारी का क्या दोष? यह ईश्वरीय देन है। यदि सुवर्ण मुद्राओं के साथ सुंदर नारी को खड़ा किया जाए तो यदि तपस्वी से कहा जाए इसमें से एक का चुनाव करो तो वह निश्चय ही नारी को चुनेगा। दुर्गुणों का उचित स्थान तो तुम ही हो। स्वधर्म छोड़कर मनमाना आचरण करना, शराब पीकर रास्ते पर तमाशा करना, जुआ खेलना, अफीम खाना, वेश्याओं के पास जाना आदि बुराइयां तो तुमने ही शुरू कर दी हैं। अब सवाल है, वेश्या कौन? उसकी तो सृष्टि विरहित उत्पत्ति नहीं हुई, या किसी देव ने उन्हें गढ़ा? वे तो तुमसे ही उगाई गई और घर से निकाली गई औरतें हैं। स्त्री बेशर्म नहीं होती, तुमने उसे एक बार अपनी करतूत दिखाई, बाहर के मोहमयी जीवन की झांकी दिखाई तो बात ही क्या। एक बार फिर फिसली हुई वह फिर फिसलती जाती। जैसे शराब की मांग बढ़ती है उसके व्यापारी भी बढ़ते हैं। यदि तुम लोग ही मनोरंजनार्थ वेश्याओं को बढ़ावा नहीं देते तो समाज वेश्या रहित हो सकता था। लेकिन अब औरतों को चला है कि पेट भरने के लिए जिस्म का उपयोग हो सकता है, स्त्री तो पहले से ज्वाला है, उस पर संदर्भ का वरदान उसे मिला है। यह तो आग में घी के बराबर हुआ ना। किसी वेश्या से यदि उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछा जाए तो आग बबूला हो वह पुरुष की ही निंदा करेगी जो उसे इस स्थिति तक ले आया।